फिर आगे कुछ अहकाम खाने पीने से मुतलिक, और एक दूसरे का माल नाहक न खाया करो, न हाकिमों को रिश्वत पहुंचा कर किसी का कुछ माल जुल्म और सितम से अपना लिया करो, हालांकि तुम जानते हो, क्या पता चला कि मोमिन को 1 महीना रोजा रखवा कर 11 महीने तक हराम से रुकने का सबक दिया जा रहा है। ये है असल में तकवा, के हलाल छोड़ो ताकि बाद में हराम छोड़ने की भी आदत पड़े। फिर चांद से मुतल्लिक कुछ तवहमात थे अरबों में, उसी का इलाज, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, लोग आपसे चांद के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए ये लोगों की इबादत के वक्तों और हज के मौसम के लिए है, अहराम की हालत में और घरों के पीछे से तुम्हारा आना कुछ नेकी नहीं, बल्कि नेकी वाला वो है जो मुत्तकी हो, और घरों में तो दरवाजों से आया करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। लिखिए, कामों को ढंग से करो, नेकी के नाम पे कोई ऐसी बेकार चीजें या ऐसे तरीके ना इख्तियार करो कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। फिर आगे किताल की कुछ बातें, 190, लड़ो अल्लाह की राह में इनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और ज्यादती ना करो, अल्लाह ताला ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। क्या खूबसूरत दीन है, दुश्मनों के साथ ज्यादती नहीं तो कहाँ फिर अपनों से ज्यादतियाँ हों, भाई बहनों में ज्यादतियाँ हों, खून के रिश्तों में ज्यादतियाँ हों, कहीं जायदाद के मामलात में ज्यादती हो, तो क्या पता चला। आयत 187 से 90 पे अमल करें, तदब्बुर करें, तो पहली बात आयात पर अमल कैसे, रिश्वत से होने वाले नुकसान पर मुआशरे में आगही फैलाइए। देखिए, ऐन रमजान के बाद रिश्वत का तस्करा आया है, ना माल ना हक है, और आज ये जुमला कहना कि रिश्वत के बगैर काम नहीं होता, इसको रद्द कीजिए, ये भी अमल की बात है। कहीं भी कोई कहे तो उसको कहे नहीं, हर दौर में हराम के बगैर गुजारा हो जाता है। फिर इसी तरह किसी मुसलमान को उसका हक दिलाने के लिए उसकी मदद कीजिए। बाज़ लोगों की अप्रोच नहीं होती लेकिन वो हक पे होते हैं, तो आपने इंशाल्लाह उनकी मदद करनी है। जिसके साथ आपने कोई ज्यादती की है उससे माफी मांगी है, सबसे मुश्किल काम है, ये नियम कर पाते। अल्लाह ताला हमें ज्यादती से भी बचाए, और अगर ज्यादती अनजाने में की थी तो आप पता चल गया तो उससे माफी मांगे। कुरान पाक से रहनुमाई कैसे, शरीयतों को नाजिल करने और हुदूद को कायम करने का मकसद लोगों को मुश्किल में डालना नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना होता है और इंसानियत की फलाह व बहबूद होती है। इसी तरह शुभ वाली चीज़ों के करीब नहीं जाना वरना हराम में पड़ेंगे। अपना जायजा लीजिए, मैं मशकूक चीज़ें या शुभ वाली चीज़ों से किस तरह मामला करती हूँ। छोड़ो, कुछ नहीं होता, देखी जाएगी, खैर है, सब करते हैं, सब खाते हैं, सब पहनते हैं, या फिर मैं उससे रुक जाती हूँ। आपको शक भी हो ना, सांप है या केंचुआ है, तो आप कभी फिर भी पास नहीं जाएंगे, इतना डर होता है किसी चीज़ का। तो शुबहात में पड़ने से बचिए, लोगों का माल नाजायज तरीकों से खाने से बचना है। इसके आज हमारे यहाँ रस्म व रिवाज के नाम पे भी कई तरीके हैं, कोई बेचारा फौत हो जाता है, बाद में उसके घरों में इकट्ठे होते हैं, 1 दिन, 3 दिन, फिर 12 दिन, फिर 8 दिन, पता नहीं, और बेचारे यतीम कहाँ से पूरा कर करा के तो वो रोटियाँ खिलाते हैं। अल्लाह ताला में खुशियों के नाम पे भी और गमियों के नाम पे भी लोगों का माल नाहक तरीके से खाने से बचा ले। गौर व फिक्र के नुक्ते, सहरी के मुस्तहब होने की दलील है, सहरी खाए बगैर रोजा हो जाता है, लेकिन खाना ना सिर्फ ये कि पसंदीदा है बल्कि दुआ भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और मुस्लिम्स और गैर मुस्लिम्स के रोज़ों में फ़र्क सहरी का होता है, तो सहरी के लिए ज़रूर उठें। आप कहते रात देर तक खाते रहे, अब सहरी खाने की क्या ज़रूरत है, जो भी हो चाहे खजूर खाएं, पानी पिए, ज़रूर उठिए। हराम फेल और इनके ज़राए दोनों की हुरमत बयान कर दी, अब आपका मेरा काम क्या है, इनसे रुकना है। इसी तरह इन आयात से एक नुक्ता उलमा ने निकाला कि एतिकाफ सिर्फ मस्जिद में होगा, यानी रमजान का मसनून एतिकाफ जो 10 दिन का है वो मस्जिदों में होगा, और रोजेदार के बात करके, रिश्वत की बात करके असल में ये बता दिया कि रोजेदार जो होता है वो रिश्वत से दूर रहता है ताकि उसके रोजे की हिफाजत हो, यानी छेद हो जाते हैं ना गलत कामों से, हमारी इबादत ज़ाया होने लगती हैं। तो क्या खुलासा निकला कि अल्लाह ताला आपको 1 महीना ट्रेनिंग सेशन देते हैं, रमज़ान एक ट्रेनिंग सेशन है। रमज़ान के महीने में अपने आप को अंडर ऑब्जर्वेशन फील कीजिए और उसका फिर असर बाकी 11 महीने अपने ऊपर लेंगे। आगे 191 से 196, वक्तलूहुम हैसु सकिफ्तुमूहुम वअख्रिजूहुम मिन हैसु अख्रजूकुम वल फितनतु अशद्दु मिन अल क़त्ल। ये पूरी आयत किताल के मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो उस दौर से लेकर आज तक के कई सवालों का जवाब सिर्फ आपको तर्जुमे में मिल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इन्हें मारो जहां भी पाओ और इन्हें निकालो जहां से इन्होंने तुम्हें निकाला, यानी मक्का वालों की तरफ इशारा है। और सुनो, फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है, और मस्जिद हराम के पास इनसे लड़ाई ना करो जब तक ये खुद तुमसे ना लड़े। अगर ये तुमसे लड़े तो तुम भी इन्हें मारो, काफिरों का बदला यही है। अगर ये बाज आ जाए तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है, इनसे लड़ो जब तक कि फितना ना मिट जाए और अल्लाह ताला का दीन गालिब ना आ जाए। अगर ये रुक जाए तो तुम भी रुक जाओ, ज्यादती तो सिर्फ जालिमों ही पर है। बार बार आप देख रहे हैं कि दुश्मनों से भी मामला करते वक्त इस्लाम ज्यादती से बचा रहा है। ये हमारा खूबसूरत दीन है जो दूसरों को बताया जाए तो यकीनन वो हमारे ऊपर लगाए हुए इल्जामात से हमें गनी कर देंगे। तो इस्लाम बर्बेरिक नहीं है, कत्ल जंग लड़ाई ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। अपना दिफा करना हर एक का हक है। अगर आपको कोई मारे तो आप कैसे नहीं आगे से हाथ उठाएंगे? तो अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी जान इज्जत और माल की हिफाजत का ना सिर्फ हुक्म दिया है बल्कि इसको पसंदीदा भी करार दिया, और इस दौरान अगर कोई मर जाता है तो उसके लिए शहादत की मौत है। आगे हुरमत के 4 महीनों की बात है। हुरमत वाले महीने हुरमत वाले महीनों के बदले में हैं, और हुरमत अदले बदले की हैं। जो तुम पर ज्यादती करे तुम भी इसी पर इसके मिसल ज्यादती करो जो तुम पर की है, और अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि अल्लाह ताला परहेजगारों के साथ है। हमें पता होता है हुरमत के महीने कब आए हैं? इस मुल्क में तो पता चलता ही होगा। शऊर से इधर अपने लिए लिखे कि हुरमत के महीनों में तो कोई लड़ाई नहीं करनी, चाहे वो किसी से रिश्ते के नाते पे है या जायदादों के मामले में है। फिर आगे एक बहुत प्यारा कानून, क्या अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों हलाकत में ना पड़ो, सलूक और एहसान करो, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। हज और उम्रे को अल्लाह ताला के लिए पूरा करो, हाँ अगर तुम रोक लिए जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर हो इसे कर डालो और अपने सर ना मुंडवाओ जब तक कि कुर्बानी कुर्बान गाह तक ना पहुंच जाए। अलबत्ता तुम में से जो बीमार हो या इसके सर में कोई तकलीफ हो जिसकी वजह से सर मुंडा ले तो इस पर फिदिया है, यानी एहराम की हालत में अगर बाल कटवा लिए जाएं तो उसका फिदिया आपको इन आयात में पता चल गया। क्या ख्वाह रोजे रख ले या सदका दे दे या कुर्बानी करे, बस जब तुम अमन की हालत में हो तो जो शख्स उम्रे से लेकर हज तक तमत्तो करे, यानी हज तमत्तो हो उसका, बस इसे जो कुर्बानी मुयस्सर हो इसे कर डाले। जिसे ताकत ही ना हो वो 3 रोजे तो अय्याम हज में रखे और 7 जब वापस हो, ये पूरे 10 हुए। ये हुक्म इनके लिए है जो मस्जिद हराम के रहने वाले ना हो। लोगो अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह ताला सख्त अजाबों वाला है। इतना खूबसूरत दीन है हमारा, एक एक छोटी बड़ी बात खोल खोल कर बयान करता है। तो आइए तदब्बुर और अमल करते हैं। पहली बात ये है कि इसमें अल्लाह के दीन की बात हुई। जो लोग दीन को सर्व करते हैं उनकी खिदमत करनी है, उनके घर वालों को हदिये भिजवाने हैं। इसी तरह से मोहताज और कमज़ोर लोगों के साथ भलाई कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा इम्तिहान ही ये होता है बंदे का। अपने से ऊंचे या अपने बराबर वालों से तो लोग अच्छे ही रहते हैं, लेकिन असल अच्छाई क्या है कि अपने से कमज़ोर के साथ आप अच्छे हों। फिर अल्लाह ताला से मदद मांगते हुए हज और उम्रे के लिए प्लान्स कीजिए। आपके लिए मेरे लिए तो यहाँ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया से जो लोग हज और उम्रे के लिए नियत करते हैं तो उनको प्लान्स बनाने चाहिए, कुछ करवा देना चाहिए, मिलजुल के एक दूसरे का साथ दें, क्योंकि इससे दिल में अल्लाह की भी मोहब्बत आती है और इस्लाम भी सच्चा मज़हब लगता है। जब आप इतने लोगों को इकट्ठा देखते हैं, अल्लाह ताला आपको मुझे बार बार हज और उम्रे नसीब फरमाए। कुरान से रहनुमाई देखते हैं, अल्लाह की राह में खर्च ना करना हलाकत है, जिहाद का इनकार करना हलाकत है। जो कौमें जिहाद का इनकार करती हैं दुश्मन उन पर मुसल्लत हो जाते हैं, फिर वो बैलों की दुमे पकड़ कर इधर उधर भागते हैं या तिजारत में खोए रहते हैं। अफसोस है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा की हालत कुछ इसी किस्म की हो चुकी है। अल्लाह ताला हमें कुरान से जोड़े ताकि इसी कुरान से हम हिदायत लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगियों को अपने लिए मिशले राह बना सकें। फिर इससे एक और अमल की बात जो निकलती है रहनुमाई में कि कुरान का या नेकी का काम आला तरीके से करना चाहिए। जैसे दुनियावी चीज़ों को सजाते हैं, संवारते हैं, नोक पलक दुरुस्त करते हैं, तो दीन और दीन के नाम पे महफिलें जो भी हों, जो मस्जिदें हों, जो मदारिस हों, वो भी अपनी मिसाल आप हों, उनको देखकर दिल करे वहाँ आने को, वहाँ अल्लाह की रहमत उतरे। इबादत में इखलास को बढ़ाने की कोशिश करनी है। इसी तरह मकबूल हज ये है कि आदमी दुनिया की मोहब्बत से पाक और आखिरत की मोहब्बत से सरशार होकर वापस लौटे। यह हसन बसरी का कॉल है। इसके ऊपर हम अपने पुराने हज जो कर चुके उनको परखें। क्या जब मैं हज करके आई तो मेरा दिल दुनिया की मोहब्बत से बेजार और आखिरत की मोहब्बत से सरशार हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर एक और हज करके इंशाल्लाह अल्लाह से ये चीज़ मांगते हैं। गौर व फिक्र की चंद बातें। शरीयत का अहम मकसद दीन की हिफाजत है। कुफर और शिर्क कत्ल से भी बड़े सख्त हैं, सख्त भी हैं और बड़े भी हैं। माल और अहल याल में खो कर दीन से पीछे हटना हलाकत है। इस पे गौर कीजिए। आज बहुत सारे लोग दीन को कुछ महीनों का एक काम, एक दो साल का कोई कोर्स करके करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। बस ये हमने 1 साल की आपसे कमिटमेंट की थी, वॉलंटियर करेंगे, अंसारुल्ला बनेंगे तो छोड़ देंगे। जब छोड़ते हैं ना तो समझे अपने आप को हलाकत में डालता है इंसान। दुआ करें जो नेकी शुरू हो जिंदगी के आखिरी दम तक हमारे साथ चले। फिर बदला लेते हुए तकवा पर कायम रहना है, यानी ज्यादती नहीं करनी। कुछ बातें हज से मुतलिक मजीद 197 से 202। अल हज अशहुरु मालूमात उन फमन फरद फीहिन अल हज फला रफस वला फुसूक वला जिदाल फिल हज। हज के महीने मुकर्रर हैं, इसलिए जो शख्स इनमें हज लाजिम कर ले वो अपनी बीवी से मेल मिलाप करने, गुनाह करने और लड़ाई झगड़े करने से बचता रहे। तुम जो नेकी करोगे इससे अल्लाह ताला बाखबर है, और अपने साथ सफरे खर्च ले लिया करो। सबसे बेहतर तोशा अल्लाह का डर है। और अकलमंदो मुझसे डरते रहो। क्या पता चला, कुछ लोग थे ना खाली बस चले जाते थे अल्लाह के घर, वहां जाके मांगते, कहते अल्लाह के घर जा रहे हैं, अल्लाह खुद ही खिलाएगा। तो ये तो हज की रूह नहीं थी, तो मना कर दिया कि ऐसा ना करो। हाँ, तकवा साथ लेके जाओ। अब देखिए अमूमन लोग जो हज उमरे पे आते हैं ना, अपने साथ डॉलर्स लेके आते हैं, ताकि उस करेंसी को जब चाहेंगे सऊदी करेंसी में चेंज करा लेंगे। जैसे डॉलर्स या कोई आउटसाइड करेंसी लेकर आते हैं तो उसको चेंज करते हैं ना मुकामी करेंसी में, इसी तरह तकवा की करेंसी भी लानी चाहिए। क्योंकि हज और उमरे में तो कदम कदम पे सब्र की जरूरत पड़ेगी, और अगर सब्र नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए एक और बात थी कि हज और उमरे के दौरान क्या कुछ कमा सकते हैं, सफर का खर्च पूरा हो जाए या ना हो, तो उस सवाल का जवाब दिया गया। तुम पर अपने रब का फजल तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। जब तुम अरफात से लौटो तो मस्जिद हराम के पास जिक्र इलाही करो और इसका जिक्र करो जैसा कि इसने तुम्हें हिदायत दी, हालांकि तुम इससे पहले राह भूले हुए थे। फिर तुम इस जगह से लौटो जिस जगह से सब लोग लौटते हैं। अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। हज के सारे मनासिक आपको इन आयात में इशारतन बता दिए गए। पूरे वो रिचुअल्स हैं जो हम आज के दिनों में करते हैं, इसी में कुछ आगे आयत 200। फिर जब तुम अरकाने हज अदा कर चुको तो अल्लाह ताला का जिक्र करो, जिस तरह तुम अपने आबा अजदाद का जिक्र किया करते थे। अरब लोग जो होते हज के दिनों में अपने बुजुर्गों की बड़ाइयाँ पेश करते, महफिलें सजाते, तारीफें करते, का बाप दादा का जिक्र नहीं करो, अल्लाह का करो। उनकी बड़ाइयाँ और फख्र ना करो बल्कि अल्लाह की बड़ाई बयान करो। आज हम क्या करते हैं, स्नैप्स बना बना कर भेजते हैं, देखो मैं यहाँ आई, ये हुआ। फिर जब हज उमरे से जाते हैं खूब कहानियां बना बना के सुनाते हैं। तो याद रखिए हज एक पर्सनल इबादत है, किसी को कानो कान ना पता चले कि उमरे पे आप आए या हज पे आए। और जो एयरपोर्ट पे फूलों की बेअदबी हो रही होती है, हाजियों और उमरे वालों को लेने के लिए एयरपोर्ट भरे होते हैं, आजकल भी यही हालात है। ऐसी चीजों से बचिए क्योंकि इससे तकवा कम होता है। वहां खड़े होकर आप सेल्फीज बनाना, मैं इधर आई हूँ देखो मैं ऐसी लग रही हूँ, इन सब चीजों से 100% बचने की जरूरत है। और करो क्या, जो मांगने गए हो वो देखो। अल्लाह ताला फरमाते हैं बस लोग वो हैं जो कहते हैं रब बना तीना फिर दुनिया, बस ए अल्लाह हमें दुनिया में दे, दुनिया दुनिया दुनिया। ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। यहाँ भी जरा वो लिस्टें चेक कर लीजिए जो लोग आपको दुआओं के लिए देते हैं। 80% चीजें उसमें दुनिया की होती हैं। बुरी बात तो नहीं है, लेकिन दुनिया भी मांगी अधूरी क्यों। अब आगे देखिए, वमिनहुम मन यकूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। और बस लोग वो हैं जो कहते हैं कि हमारे रब हमें दुनिया में नेकी दे और आखिरत में भी भलाई अता फरमा और हमें अजाब जहन्नम से निजात दे। ये वो लोग हैं जिनके लिए इनके आमाल का हिस्सा है, अल्लाह तआला जल्द हिसाब लेने वाला है। ये मांगिए, दुनिया का हसना क्या है लिख लें, जो अल्लाह की रजा से मिले। हराम माल कभी हसना नहीं होगा। और आखिरत का हसना क्या है कि जिस पे कोई हिसाब ना हो। आयत 197 से 202 पे तदब्बुर करेंगे। सबसे पहली बात, आयतों पे अमल कैसे करें। अल्लाह तआला से दुआ करके दूसरों से मांगने की बजाय माली मामलात को अपने वसाइल से पूरा करने का प्लान करें। चादर देखकर पांव फैलाएं। हमारे बड़े तो यही कहते थे, आज कहते हैं क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद, बाद में आएंगे। कर्जों में डूब गई आज कौम। हर इबादत और नेक अमल के बाद अल्लाह ताला से गुनाहों की माफी मांगिए, क्योंकि नेकियां करने के बाद दुआएं कबूल होती हैं। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इस दुआ को शऊर से मांगिए और चेक कीजिए कि मुझे दुनिया की जो भी चीज मिलती है क्या वो हसना है। कुरान पाक से रहनुमाई लेंगे, इबादत के मकासद को हासिल करने वाले इल्म, तरबियत और अखलाक के हवाले से बेहतरीन होते हैं। लिहाजा हमें इल्म और इबादत दोनों को साथ लेकर चलना। खाने पीने के अहतमाम के साथ दिल की इसलाह और तकवा का अहतमाम करें। कैसे? कुरान सुन के, कुरान पे गौर करके, तदब्बुर करके। देखिए, कुरान को जितना पढ़ेंगे ना, आपको यकीन आता जाएगा कि ये रब का कलाम है और उसने आपको हर वो बात कही है जो आपके अपने हक में बेहतर है। इसी तरह काम छोटा हो के बड़ा उसको हकीर ना जानिए, क्योंकि वो हस्ती बहुत बड़ी है जिसके लिए आप वो काम कर रहे हैं। कुछ बातें गौर व फिक्र की। दुनिया की मोहब्बत से पाक और आखिरत की रग़बत से सरशार हज ही कबूल होगा। अल्लाह आपको मुझे जब भी हज पे ले आए तो ये सोचेंगे कि एक एक अमल इस तरह का करना है कि अल्लाह के यहाँ कबूलियत हो। क्योंकि बोलिए पिछले पारे का सबक, असल चीज काबिलियत नहीं कबूलियत है। कुरान बुराइयों से बचाता है जबकि नेकी और तकवा पर उभारता है। अहले अकल को तकवा का खास हुक्म दिया जाता है। क्या पता चला कि जितनी अकल होगी ना उतना ही तकवा होगा। अल्लाह ताला हमें अकले सलीम अता फरमाए। फिर इसी तरह से जिसने असबाब और वसाइल को छोड़ दिया वो तवक्कुल वाला नहीं है। यानी आप ये कहते हैं कि मैं अल्लाह पे तवक्कुल कर रही हूँ, अब जो होगा हो जाएगा, नहीं। कोशिशें कीजिए, ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह ताला। एकल व तवक्कल। तो आज उम्मत मुस्लिमा ये नहीं कह सकती कि हम अल्लाह के तवक्कुल पे दुनिया में इज्जत पा जाएंगे। आपको मेहनत बहरहाल करनी पड़ेगी। फिर हज के दौरान झगड़े से रुकना है। झगड़े की ममानियत और तिजारत का जवाज़ मिल गया। लेकिन ये नहीं कि पूरा वक्त तिजारत में लगे रहें और नमाजें भी ना अदा कर सकें। दिल की लगन से किया जाने वाला जिक्र ही मोतबर है। जब भी कहते हैं ना अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, तो साथ फील किया और कराया करें। लोगों की तादाद ज़्यादा होते हुए भी फ़ायदा नहीं देती जब तक अल्लाह साथ ना दे। अल्लाह के साथ को मांगिए। लोगों को छोड़ दें, पीपल प्लेयर, कितने सुनते हैं, कितनों ने सब्सक्राइब किया, ये सब बेकार बातें होती हैं। असल बात है रब के पास आपकी वो चीज़ कितनी कबूल हो रही है। आगे देखिए 203 से 210। वस्कुरुल्लाह फी अय्यामि मादूदात फमन तअज्जल फी यौमिन फला इस्मा अलैहि वमन तअख्खर फला इस्मा अलैहि। और अल्लाह तआला की याद इन गिनती के चंद अय्याम में करो। इशारा है अय्याम तशरीक की तरफ। 2 दिन की जल्दी करने वाले पर भी कोई गुनाह नहीं और जो पीछे रह जाए इस पर भी कोई गुनाह नहीं। ये परहेजगार के लिए है और अल्लाह ताला से डरते रहो और जान रखो तुम सब इसी की तरफ जमा किए जाओगे। सोचिए कैसा होगा वो दिन जब हम अपने रब के सामने पेश होंगे। बस लोगों की दुनियावी गर्ज की बातें आपको खुश कर देती हैं। यदि बातें बड़ी खूबसूरत करते हैं लच्छेदार और वो अपने दिल की बातों पर अल्लाह को गवाह करता है, मुनाफिक की अलामत है बात बात पे कसम खाना। हालांकि दरअसल वो जबरदस्त झगड़ालू है। लिख लीजिए, झगड़ा करना निफाक की अलामत है। जब वो लौट कर जाता है तो ज़मीन पर फसाद फैलाने की और खेती और नस्ल की बर्बादी की कोशिश में लगा रहता है, और अल्लाह ताला फसाद को नापसंद करता है। और जब उसे कहा जाए कि अल्लाह से डरो, और तो तकब्बुर और तासुब इसे गुनाह पर मायल कर देता है, यानी गुनाह पर आमादा कर देता है, ऐसों के लिए बस जहन्नुम ही है, और यकीनन वो बदतरीन जगह है। एक बहुत ही बुरा किरदार आ रहा है, वोट लेने की खातिर चाहे या बाकी चीज़ों की खातिर वो लोगों को खुश करता है, लेकिन बाद में वो जिम्मेदारियां अदा नहीं करता जो अल्लाह ताला के नाम पर उसने लोगों से कमिट की होती हैं। इसके बरक्स अभी शायद को हाईलाइट कीजिए, आपका मेरा गोल ये होना चाहिए, कौन वमिनन नासी में यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह। और बस लोग वो भी हैं जो अल्लाह की रजामंदी की तलब में अपनी जान तक बेच डालते हैं, और अल्लाह ताला अपने बंदों पर बड़ी मेहरबानी करने वाला है। दुआ करिए पहले कि अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल कर दे, हमारा तन मन धन अल्लाह के रास्ते में लग जाए। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अरकुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये दुआ किया करें। सारा कुछ बेच दें अल्लाह के लिए, आई ओव नथिंग, आई ओन नथिंग, मैंने किसी का कुछ देना कुछ नहीं, और मेरे नाम पे कुछ नहीं, मेरा सब कुछ मेरे रब का है। इस लेवल पे जो ज़िंदगी गुजारते हैं ना, उनकी ज़िंदगी कैसी होती है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, और शैतान के कदमों की ताबेदारी न करो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अगर तुम बावजूद तुम्हारे पास दलीलें आ जाने के भी फिसल जाओ, तो जान लो कि अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है। क्या लोगों को इस बात का इंतजार है कि इनके पास खुद अल्लाह ताला बादल के साहिबानों में आ जाए, और फरिश्ते भी, और काम इंतहा तक पहुँचा दिया जाए, अल्लाह ही की तरफ तमाम काम लौटाए जाते हैं। देखिए कितनी दीदा दिलेरी है ना, डरना ना, अल्लाह ताला धमकी दे रहे हैं कि क्या मैं खुद आकर तुम्हारा हिसाब लूँ, तुम ये चाहते हो? क़यामत की तरफ इशारा है, अल्लाह ताला अपना डर दिला रहे हैं इन आयतों में। तो देखिएगा इन आयात पे तदब्बुर कैसे करेंगे। पहली बात है कि दूसरों के बारे में राय देने से पहले 10 दफ़ा सोचिए। हमारे कल्चर में एक बहुत बुरी बात है, एग्जैजरेशन, अफराद, किसी को अच्छा कहेंगे सर पे चढ़ा लेंगे, और बुरा कहेंगे तो उसकी कोई एक खूबी आपको नहीं नजर आती 1001 खामियों के अंदर से भी। तो राय में अफराद और तफरीद से बचिए। किसी ऐसे शख्स की जिंदगी पर गौर कीजिए जिसने अल्लाह की रजा के लिए खुद को वक्फ कर दिया हो, फिर उनके पास बैठकर उनसे पूछिए कैसे कैसे करते हैं। आज भी दुनिया में चंद ऐसी निशानियां जरूर होंगी, मिसालें होंगी कि जो लोग अपने आप को अल्लाह का कह दें, अल्लाह मुझे आप उन लोगों में शामिल कर दे। फिर ऐसा गुनाह जो आपने कभी माजी में किया और अभी तक आपको कचोके देता है, उसको याद कीजिए और उस पर तौबा करें। इसी तरह अपने वो गुनाह सोचिए जो बार बार करती हैं, हर रोज तौबा करता हूँ, हर रोज माफिया मांगता हूँ, फिर गुनाह करता हूँ, तो जान रखिए ये शैतान की चाल है। शैतान बंदे से गुनाह बार बार कराता है ताकि उसको गुनाह इतना अहम ना लगे। इसी तरह कुरान पाक से रहनुमाई क्या है, तकब्बुर नसीहत कबूल करने से रोक देता है। अपना जायजा लीजिए, जब कोई मुझे नसीहत करता है तो मुझे कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो आप में तकब्बुर नहीं है, आप इग्नोरेंट हो सकते हैं लेकिन आप एरोगेंट नहीं है। और अगर बुरा लगता है तो देखिए कहीं आपकी अना तो नहीं बढ़ी हुई। अपने आप को और अपने औकात को अल्लाह की रजा के लिए वक्फ कर दीजिए। शैतान मोमिन को घेरने के लिए आहिस्ता आहिस्ता मुस्तकिल वसवसों में डालता है, आहिस्ता आहिस्ता उसको वो गुनाह के करीब लाता है, उससे बचना है। इसी तरह गौर व फिक्र, लड़ाई झगड़े में सख्ती करना नापसंदीदा है। अपने आप से एक सवाल कीजिए, कहीं लोग मुझे झगड़ालू तो नहीं कहते, लड़ाकी तो नहीं कहते, बहुत सख्त हार्ड औरत तो नहीं कहते? कलामो गुफ्तार की सदाकत का हकीकी पैमाना लोगों का अमल होता है। जी, अमल से अपने आप को और दूसरों को परखिए, दूसरों को परखने से एहतियात कीजिए। हासिबु कबलन तो हासिबु, अपना हिसाब लीजिए, लोगों को अल्लाह पे डाल दीजिए। चौकीदार तो नहीं है हम, किसी के सर पे मुसल्लत तो नहीं है। इंसान के कौल और अमल में मवासना करना हिकमत और दानाई है। कोई जो बात करता है ना, देखें कि उसके अमल में भी वो झलकती है कि नहीं। दिख जाए अब बात अच्छी है फिर भी ले ले, वो अमल नहीं भी करता तो ये उसको गुना होगा, आपको नहीं होगा। फिर आगे जो खूबसूरत आयत गुजरी है, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, आप देखिए अधूरे दिल से अधूरी नेकियां होती हैं, पूरे दिल से पूरी नेकियां होती हैं। आज हम मीडियोकर्स हैं दीन के नाम पे। अल्लाह कहते इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, मतलब इसका एक जुमले में पता क्या है, ख्वाहिश नफ्स को दीन के ताबे कर दो। दीन को ख्वाहिश नफ्स का नहीं, ख्वाहिश नफ्स को दीन के ताबे कर दो। नदानी और जहालत की बिना पर गुनाह के मुकाबले में जानबूझकर गुनाह करने की सजा ज्यादा बड़ी होती है अनजाने में गुनाह करने से, और आलिम का दर्जा इबादत से बढ़कर है, और इसी तरह उसके गुनाह भी दूसरों के गुनाहों से बढ़ते हैं, यानी सोच समझ के जिंदगी गुजारिए। फिर आए 211 से 215, सल बनी इसराइल कमातना, बनी इसराइल से पूछो तो कि हमने इन्हें किस कदर रोशन निशानियां अता फरमाई, और जो शख्स अल्लाह ताला की नेमतों को अपने पास पहुंच जाने के बाद बदल डाले वो जान ले कि अल्लाह ताला भी सख्त अजाबों वाला है। काफिरों के लिए दुनिया की जिंदगी खूब जीनतदार की गई है, वो ईमान वालों से हंसी मजाक करते हैं, हालांकि परहेजगार लोग क्यामत के दिन इनसे आला होंगे। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। दुनिया कहाँ से शुरू हुई? दरअसल लोग एक ही गिरोह थे। अल्लाह ने अम्बिया को खुशखबरियां देने और डराने वाला बनाकर भेजा, और इनके साथ सच्ची किताबें नाजिल फरमाई ताकि लोगों के हर इख्तलाफी अमर का फैसला हो जाए, और सिर्फ इन्हीं लोगों ने जो इसे दिए गए थे अपने पास दलाइल आ चुकने के बाद आपस के बुग़्ज़ और इनाद की वजह से इसमें इख्तलाफ किया, इसलिए अल्लाह पाक ने ईमान वालों की इस इख्तलाफ में भी हक की तरफ अपनी मशीयत से राहबरी की, और अल्लाह ताला जिसको चाहे सीधी राह की तरफ राहबरी करता है। अपने लिए दिल से दुआ करें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी ख्वाहिशों की जन्नत में रहते हैं। इसीलिए फरमाया हम हसिब तुम तदखुलुल जन्ना, क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात ही नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। इन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और वो यहाँ तक झंझोड़े गए कि रसूल और उसके साथ वाले ईमान कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, सुन रखो अल्लाह की मदद करीब ही है। अला इन्ना नस्रुल्लाही करीब। आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें, आप कह दीजिए जो माल तुम खर्च करो वो माँ बाप के लिए है, और रिश्तेदारों और यतीमों और मिसकीनों और मुसाफिरों के लिए है, और तुम जो कुछ भलाई करोगे अल्लाह ताला को इसका इल्म है। सवाल क्या था, क्या खर्च करें, व्हाट, जवाब क्या मिला, वेयर। अभी एक दवा भी आगे दोबारा जवाब भी आएगा, इससे पता चलता है कि जरूरी नहीं होता जो सवाल पूछा जाए बिल्कुल एग्जैक्ट उसका वही जवाब दिया जाए। तो तदब्बुर के नुक्ते देखिए इन आयात में, शैतान हमें बेहयाई और मुनकर में डालता है कैसे, लिबास को हल्का करके, नीम उरिया या हद से ज्यादा फैशन वाला लिबास पहनकर अकड़ना और दूसरों के अंदर अपने आप को बड़ा समझना, ये अल्लाह की नेमतों की नाशुक्रिया है, इससे बचना है। कुरान की हिफाजत से ही असल दीन कायम है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। देखिए हम पढ़ रहे हैं ना, जबर और जेर भी नहीं बदल सकते, है को जैस नहीं और नहीं को है नहीं कह सकते, बस यही पूरी जिंदगी में अगर असूल बना ले तो अल्लाह ताला हमारी भी हिफाजत करेगा इंशाल्लाह। फिर इसी तरह मोमिन की आजमाइश का इंजाम बड़ा खूबसूरत होता है और जन्नत से कम नहीं होता। तो जिंदगी में अगर कभी आप या आपका कोई प्यारा आजमाइशों में आए तो उसको तसल्ली दें कि कोई बात नहीं, देखना इसके बाद अल्लाह की मदद आएगी। कुरान पाक से रहनुमाई कैसे लेंगे, दीन पर साबित कदम रहेंगे, क्योंकि इसी से मुआशरों में अमन और अमान होगा। उम्मत की रुसवाई का सबब किताब और दीन में इख्तलाफ और ख्वाहिशात की पैरवी, तीन बातें लिख लें। कुरान से दूरी, दीन में इख्तलाफ और ख्वाहिशात की पैरवी। हम ये जो बिगड़े हैं ना, ये एकदम नहीं बिगड़े, ये तीनों चीज़ें आज उम्मत मुस्लिमा में बहुत कसरत से हैं। इसी तरह दुनिया की मोहब्बत में हद से तजावुज़ करना, इससे इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत कम और दुनिया का खौफ ज़्यादा हो जाता है। नेमत की तब्दीली क्या है कि आलिम का इल्म उसी की तरफ लौटा दिया जाए और नेक आदमी से हिदायत और रहनुमाई ना ली जाए। यानी अल्लाह हमें मौके देते हैं, इन आयतों में ना अल्लाह ने बताया कि मैंने तुम्हें एक नेमत दी थी, तुमने कदर नहीं की। अल्लाह के नबी एक नेमत है, लकद मन्नल्लाहु, आयतें आगे आएंगे चौथे बारे में। आज हमने अपने प्यारे नबी के तरीकों को छोड़कर, गैरों के तरीकों पर खुद को चलाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाशुकरी की। अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। नेमत का शुक्र और इसके तकाजे ना निभाए जाएं तो नेमत छिन जाती है, ये तो अल्लाह का फैसला। दुनियादार की निगाह में फलाह हो कामयाबी, एक दूसरे से आगे बढ़ना और फख्र और ज्यादती होती है। और दीनदारों की निगाह में कामयाबी अल्लाह की नज़रों में सच्चा होना होती है। जन्नत में दाखिले की शर्त मसाइब और सख्त हालात में सब्र करना है। अल्लाह हमें सब्र वाला बना दे। खर्च करते हुए नियतें खराब हो जाती हैं, इसलिए खर्च करने में फख्र से बचना है। 216 से 219, अब ये आखिरी आयते हैं किताल और जिहाद से मुतल्लिक। इसके बाद खवातीन के मसाइल, शौहर और बीवी के ताल्लुक के साथ साथ और तलाक और इद्दत के मसाइल हैं, ये भी दीन का हिस्सा है। क्या फरमाया आयत 216 से, कुतिबा अलैकुमुल किताल व हुवा कुरहुल लकुम बस अन तकरहु शैयं व हुवा खैरुल लकुम। तुम पर जिहाद फर्ज किया गया गो के वो तुम्हें दुश्वार मालूम हो, नोट कीजिएगा। अल्लाह कहते हैं कि तुम्हें मुश्किल लग रहा है लेकिन मैंने फर्ज कर दिया। अब एक जिंदगी का असूल लिख रहे हैं। मुमकिन है कि तुम किसी चीज को बुरी जानो और दरअसल वही तुम्हारे लिए भली हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को अच्छी समझो हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। हकीकी इल्म तो अल्लाह ही को है, तुम महज बेखबर हो। नहीं अच्छी लगती ना कोई चीज, इस आयत को सोच लीजिए। कोई रिश्ता अच्छा नहीं लगता, किसी इंसान से मामला अच्छा नहीं लग रहा, तकदीर का कोई फैसला कबूल नहीं, बाज़ औरतों को अपना शौहर पसंद नहीं, किसी मर्द को अपनी बीवी पसंद नहीं। अल्लाह कहते हैं कि शायद उसी में तुम्हारे लिए खैर हो। अगले की दूसरे की खैर ढूंढिए। लोग आपसे हुरमत वाले महीनों में लड़ाई के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इनमें लड़ाई करना सख्त गुनाह है, लेकिन अल्लाह की राह से रोकना, इसके साथ कुफर करना और मस्जिद हराम से रोकना और वहाँ के रहने वालों को वहाँ से निकालना अल्लाह के नज़दीक इससे भी बड़ा गुनाह है। यानी दूसरे की आँख के तिनके को शहतीर समझते हो और अपने शैतीर को तिनका समझते हो, यानी दूसरों की बुराइयां टटोलने से पहले अपनी भी देखो। ये फितना कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। ये लोग तुमसे लड़ाई भड़ाई करते ही रहेंगे यहाँ तक कि अगर इनसे हो सके तो तुम्हें तुम्हारे दीन से मुर्तद कर दें। और तुम में से जो लोग अपने दीन से पलट जाएं और इसी कुफर की हालत में मरें, इनके अमाल दुनियावी और उखरवी सब गारित हो जाएंगे। ये लोग जहन्नमी होंगे और हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को ईमान पे जिंदा रखे, ईमान पे मौत दे, कभी भी इर्तदाद ना आए हमारी जिंदगियों में। अब बड़ी प्यारी आयत है, इसको ज़रा इंजॉय कीजिएगा। अक्सर लोग कहते हैं अल्लाह की रहमत होगी जी, अल्लाह बड़ा रहम वाला है। आयत क्या बता रही है, अल्लाह के रहमत को पाने के लिए क्या क्या होगा? अलबत्ता ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले ही रहमत इलाही के उम्मीदवार हैं। अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बहुत मेहरबानी करने वाला। याद रखिए नेकियों में ये बड़ी बड़ी नेकियां हैं। हिजरत बहुत मुश्किल लगती है, अपना घर छोड़ के जब बैठना कहीं मुश्किल है, आसान है? एक जगह छोड़कर दूसरी जगह में जाना आसान है कि मुश्किल है? जिहाद आसान है कि मुश्किल है? टॉप मोस्ट नेकियां ये। अल्लाह कहता है ये करने वालों को उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह बख्श देगा। तो हम तो इससे बहुत नीचे उम्मीद लगा लेते हैं। उम्मीद रखिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि यकीन के दर्जे पे रहें। आगे शराब के सिलसिले का इब्तदाई हुक्म। लोग आपसे शराब और जुए का मसला पूछते हैं, आप कह दीजिए इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों को इससे दुनियावी फायदा भी होता है, लेकिन इनका गुनाह इनके नफे से बहुत ज्यादा है। आपसे ये भी दरियाफ्त करते हैं कि क्या कुछ खर्च करें, तो आप कह दीजिए हाजत से ज्यादा चीज। अल्लाह ताला इसी तरह अपने अहकाम साफ साफ तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है ताकि तुम सोच समझ सको। यानी इब्तदाई हुक्म में जहन साजी की गई है। आगे आप इसकी मजीद दो आयतें और पढ़ेंगे जिसमें फिर शराब हतमी तौर पे हराम हो गई। आपके लिए मेरे लिए अमल का नुक्ता यह है कि लोगों की बुराइयां तदरीजन और हिकमत के साथ छुड़वाइए। तदब्बर की बातें, चंद बातें नोट कीजिए इन आयात पर अमल करने की। किसी पसंदीदा चीज़ के ना मिलने और ना पसंदीदा के मुकद्दर में होने पर शिकवा करेंगे कि शुक्र कीजिए। सोचिए ज़रा, कोई चीज़ आपको नहीं पसंद थी मिल गई, और जो पसंद था वो नहीं मिला, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि जो ना मिला उसका गम नहीं, क्योंकि जो मिला वो भी किसी से कम नहीं। तो पिछले गम छोड़ दीजिए, जो मिल चुका है उस पे राजी रहिए, क्योंकि आसान तो हिब्बु शैयन वहुवा शरुल लकुम, और अपोजिट भी है, इसलिए कि अल्लाह के अरकाम में खैर होती है। इसी तरह से अल्लाह सुबहाना ताला ने आपको मुझे इस आयत से ये सिखा दिया कि दुनिया की चीज़ों में से कोई भी चीज़ जिसके बगैर आप समझते ना मैं रह नहीं सकती, इस सोच को निकाल दें और दुआ कीजिए, अल्लाह ऐ दिलों और निगाहों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित कदम रख। आज दीन पे है, कल पता नहीं क्या हो जाए, शैतान तो पीछे है, नफ्स भी है, तो हमेशा अपने बारे में डरते रहिए। कुरान पाक से रहनुमाई, जिहाद करना क्यामत तक के लिए मुकर्रर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत मुस्तकिल जिहाद करेगी यहाँ तक कि जन्नत मिल जाएगी। जन्नत तलवारों के साए में है। लोगों को जिहाद बुरा लगता है, लेकिन उसकी खैर जो दुनिया को दिखती है बाद में, सबसे बड़ी खैर है कि उसमें कुछ लोगों को शहीद होने का मौका मिल जाता है। सच्चा मोमिन अपने मामलात अल्लाह के हवाले करता है। मुसलमान मुल्कों के खिलाफ जंग का बुनियादी सबब इस्लाम दुश्मनी है। इसी तरह गौर के चंद नुक्ते नोट करिए। जिहाद क्यों नहीं पसंद होता लोगों को? क्योंकि उसमें माल खर्च होता है और जान पे मशक्कत होती है। इंसान अपने नफ्स के तकाजों की वजह से इन चीज़ों से पीछे रहता है। जान लेने में बुराई, लेकिन कुफर और अहले कुफर के गलबे का फितना इससे भी बड़ा। यानी इस्लाम नहीं पसंद करता कोई किसी को मारे, लेकिन जब इस्लाम के ऊपर कोई मुश्किलात हों, फितने हों इस्लाम के दीन के, तो फिर फितना तो ज़्यादा बड़ा है। इसलिए फिर ऐसे वक्त में कत्ल के लिए भी हाथ उठाए और उठाने की इजाज़त दी गई। जिहाद ना करने का नतीजा मुल्क और हुकूमत पर दुश्मन का गलबा होता है, और सिर्फ अपने आमाल पर भरोसा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत की आस रखिए कि अल्लाह मेरे छोटे छोटे आमाल को कबूल करके तो अपनी तरफ से मुझे जन्नत दे दे। आयत 220 से आगे, फिद दुनिया वल आखिरती वयसलूनका निल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर। दुनिया के और दीन के कामों को, यानी उमूरे दीनी और दुनियावी को, और तुझसे यतीमों के बारे में भी सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि इनकी खैर ख्वाही बेहतर है। तुम अगर इनका माल अपने माल में मिला भी लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। बदनीयत और नेक नीयत हर एक को अल्लाह खूब जानता है, और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मशक्कत में डाल देता। यकीनन अल्लाह ताला गलबे वाला और हिकमत वाला है।